6 जून दिन बुधवार दिन भर मैं हूं रेहान फतल। राहुल गांधी ने कहा मध्य प्रदेश में सत्ता में आने के 10 दिनों के भीतर माफ किया जाएगा किसानों का कर्ज।
मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ इस स्टेट से, जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूँ यहाँ पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा।
कर्नाटक में कुमारस्वामी मंत्रिमंडल का विस्तार और दुनिया जहाँ में जानेंगे क्यों इटली की नई सरकार ने अपनाया है अप्रवासी विरोधी रुख।
आज तक इटली ऐसा देश था जिसने कभी इमिग्रेंट को नाकार नहीं किया था और ये पहली बार हम देख रहे हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। कर्नाटक में मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी ने 25 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर आज अपनी कैबिनेट का विस्तार कर लिया है। शामिल किए गए मंत्रियों में 9 मंत्री जनता दल सेकुलर के हैं, 14 कांग्रेस के हैं, जबकि बीएसपी के 1 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के नेतृत्व में बनी ये गठबंधन सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भारतीय रेलवे ने कहा है कि वो अधिक सामान लेकर सफर करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाएगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वो पहले से बनाए गए नियमों को ही लागू करने वाले हैं जिनका अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन नियमों के अनुसार यात्रियों को फर्स्ट एसी में 70 किलोग्राम, सेकेंड एसी में 50 किलोग्राम, थर्ड एसी और चेयर कार में 40 किलोग्राम और स्लीपर में 40 और जनरल में 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की इजाज़त होती है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए और यात्रियों की सुविधा के लिए और सामान से भरे डब्बों में उन्हें राहत देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। कतर एयरवेज के मालिक अकबर अल बकर ने अपने उस बयान के लिए माफी मांगी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पद को कोई महिला संभाल नहीं सकती। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को सिडनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक बैठक में जो उन्होंने कहा था वो मजाक था और उनकी कही बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा,
Let me elaborate. In QR, we also have a very large number of female.
मैं आपको बता दूं कि कतर एयरवेज में काफी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, यानी 33% से अधिक महिलाएं हमारे यहाँ काम करती हैं। हम इलाके के पहले एयरवेज हैं जिन्होंने अपने यहाँ महिला पायलटों को जगह दी। हम महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं और पायलट बनने के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। हमारे साथ काफी संख्या में महिला इंजीनियर काम करती हैं और हमारी वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट भी महिला हैं। हम मानते हैं कि वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर महिलाएं बेहतर काम कर सकती हैं। ये थे कतर एयरवेज के मालिक अकबर अल बकर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। माइक्रोसॉफ्ट ने उत्तर पूर्वी स्कॉटलैंड में आर्निकी के नज़दीक समंदर में मौजूद अपने डेटा सेंटर को पानी के भीतर रख दिया है। कंपनी का कहना है कि वो इस बात की जांच करना चाहता है कि अगर कंप्यूटर्स को पानी के भीतर रखा जाए तो उन्हें ठंडा रखने के लिए किए जाने वाले खर्च में कटौती करना संभव होगा। माइक्रोसॉफ्ट का ये डेटा सेंटर एक सफ़ेद रंग के सिलेंडर के भीतर है जो लगभग 5 साल तक समंदर के तल पर आसानी से रह सकता है। इस तक बिजली पहुंचाने के लिए एक केबल का इस्तेमाल किया जाएगा और इसी तरह इसे इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक अलग केबल का इस्तेमाल होगा। इस परियोजना पर काम करने वाले बेन कटलर कहते हैं,
Data centers use an awful lot of energy. They're filled with computers and very large data centers might be as much as 100.
Data center mein kafi matra mein bijli ki khapat hoti hai. Ye tez chalne wale computeron se bhare hote hain aur bade data centeron mein to 100 megawatt tak bijli ki zarurat ho sakti hai. Bijli ka adhiktar istemal computer chalane ke liye hota hai jabki kafi matra mein iska istemal mashino ko thanda karne mein hota hai. Ise pani mein thanda karna kahin sasta ho sakta hai. To zameen par jahan iske liye 15-20% tak adhik bijli ki khapat ho sakti hai, pani ke रखने से इसके लिए होने वाली खपत 0 तक हो सकती है। हमें लगता है कि ये अधिक व्यवहारिक है। माइक्रोसॉफ्ट के बेन कटलर के शब्द। भारतीय केंद्रीय बैंक ने बीते 4 साल में पहली बार मुद्रास्फीति के कारण अपने रेपो रेट को बढ़ाया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जिस दर पर निजी बैंक उनसे पैसा लेते हैं उसमें 0.25% की बढ़ोतरी कर उसे 6.25 से बढ़ाकर 6.50 कर दिया गया है। बैंक का कहना है कि हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और इसमें सुधार होने की संभावनाएं कम हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी के मध्य प्रदेश में सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले वर्ष के आंदोलन के दौरान गोलीबारी में किसानों के मारे जाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर राज्य का नक्शा बदल देगी। शूरे नेहा सिंह की रिपोर्ट।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मंदसौर में किसानों के बीच थे। मंदसौर में आज ही के दिन एक साल पहले किसानों के ऊपर पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई थी। मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। आरोप है कि इससे पहले प्रशासन इन किसानों के परिवार वालों पर दबाव बना रहा था कि वो राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दें। किसान समृद्धि संकल्प रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है।
चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो शिवराज जी की सरकार हो, चाहे वो किसी भी बीजेपी की सरकार हो, उन सरकारों के दिल में हिंदुस्तान के किसान के लिए इतनी सी जगह नहीं है। ये सच्चाई है। 2.5 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों का माफ किया जा सकता है, मगर हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का 1 रुपया नहीं माफ किया जा सकता है।
राहुल गांधी की रैली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव है और इस वक्त किसान सत्ताधारी पार्टी से नाराज नजर आ रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में किसानों के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनवाया, तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता मिलते ही किसानों का कर्ज मध्य प्रदेश में माफ कर दिया जाएगा।
और मैं स्टेज से मंदसौर के किसानों को, इन परिवारों को और हिंदुस्तान के किसानों को बताना चाहता हूँ, कमलनाथ जी यहाँ बैठे हैं, सिंधिया जी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ स्टेज से, जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूँ यहाँ पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा।
मंदसौर की इस रैली को सुनने के लिए बड़ी तादाद में किसानों के साथ ही आम लोग मौजूद थे। राहुल गांधी की इस रैली के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। करीब 50 पुलिस अधिकारी, सुरक्षा बलों की 5 कंपनियां, 600 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई थी। हवाई पट्टी से सभा स्थल तक ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई थी। इस रैली के साथ ही कांग्रेस ने अब विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस जानती है कि अगर उसे सत्ता में वापस आना है तो उसे किसानों का साथ चाहिए। शुरहनियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज सहयोगी पार्टी शिवसेना के नेताओं से मिलने मुंबई पहुंचे। वो अभिनेत्री माधुरी दीक्षित समेत कुछ और लोगों से भी मिले। इससे पहले दिल्ली में वो बाबा रामदेव से मिल चुके हैं, जिनके लाखों प्रशंसक हैं। वो अगले आने वाले दिनों में अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल से भी मिलने वाले हैं। इन मुलाकातों का क्या मतलब निकाला जा रहा है, सुनिए जुबैर अहमद की इस रिपोर्ट में।
अमित शाह शिवसेना के नाराज नेता उद्धव ठाकरे से जब मिलने गए तो शिवसेना ने उनका स्वागत अपनी पत्रिका सामना में ये कहकर किया कि जनता और बीजेपी के बीच अब संबंध टूट चुका है। शिवसेना बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी है। केंद्र और राज्य सरकारों में ये इसकी भागीदार है, लेकिन इसके बावजूद कुछ समय से ये बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ सख्त जुमले कहती आ रही है। पत्रकार सबा नकवी बीजेपी को करीब से जानती हैं। अमित शाह की मुलाकातों को वो इस तरह से देखती हैं।
देखिए, अभी इनको एक झटका लगा है बाय इलेक्शंस के रिजल्ट से। 3 हफ्ते के अंदर 2 तरह के अलायंसेस ने इनको हराया है। एक कर्नाटक में पोस्ट पोल अलायंस, बीजेपी किसी भी MLA को तोड़ नहीं पाई। अब दूसरा बड़ा झटका आया है कैराना की लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, जो बहुत ही अहम स्टेट होगा जब 2019 के इलेक्शन होंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। इसके अलावा छोटे छोटे झटके और दूसरे प्रांतों से भी आए हैं।
अमित शाह पंजाब जाकर अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल से भी मिलने वाले हैं। हो सकता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले। वो नेताओं के अलावा आध्यात्मिक गुरु बाबा रामदेव और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जैसी हस्तियों से भी मिल चुके हैं। उनकी ये मुलाकातें एक ऐसे समय में हो रही हैं जब बीजेपी को हाल के चुनावों में झटके लगे हैं और कर्नाटक में इसे सरकार बनाने में विफलता मिली है। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की सरकार में शामिल बीजेपी की कई सहयोगी पार्टियां इससे नाराज नजर आती हैं। मार्च में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया था। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार बीजेपी एक संकट से गुजर रही है, ठीक उसी तरह जैसे वो 2004 में हुए आम चुनाव से पहले गुजर रही थी। सियासी विश्लेषक प्रदीप सिंह के अनुसार अमित शाह की मुलाकातें पुराने साथियों को मनाने और नए साथियों की तलाश की एक कड़ी है। तो क्या पार्टी 2003 वाली स्थिति में है जब इसकी सहयोगी पार्टियां इससे नाराज थीं? प्रदीप सिंह कहते हैं नहीं।
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये 2019 की तैयारी एक साल पहले से शुरू कर दी गई है और जिस तरह का संपर्क करने की कोशिश हो रही है पॉलिटिकल प्लेयर्स से भी और नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स से भी, उसमें एक रीच आउट की कोशिश है। मुझे लगता है स्ट्रेटजी के नाते अच्छी है। अब ये सफल होगी या नहीं होगी ये 2019 का नतीजा बताएगा।
गुजरात के व्यापारी जफर सुरेश वाला प्रधानमंत्री के करीबी माने जाने वालों में से एक है। वो कहते हैं कि 2003 की तुलना में बीजेपी बेहतर स्थिति में है।
नहीं, यानी 2003 में जो पोजीशन थी बीजेपी की वो उसके मुकाबले में तो बीजेपी बहुत आगे है एक्चुअली। इसलिए कि अभी भी जो मोदी साहब का कैरिश्मा जो है इंटैक्ट है ना, अभी भी लोगों के अंदर जो उनकी मकबूलियत जो है इवन कर्नाटक में भी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि गुजरात का जो इलेक्शन जीत गई बीजेपी हारते हारते, वो जो थैंक्स टू मोदी साहब का जो लास्ट जो 8-10 दिन में जो कैंपेनिंग हुई मोदी साहब की।
लेकिन क्या इन मुलाकातों से बीजेपी को चुनावी लाभ होगा? पत्रकार सबा नकवी कहती हैं कि अब देर हो चुकी है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। जफर सुरेश वाला इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूत हुई है और गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी नेता राहुल गांधी का कद ऊंचा हुआ है, लेकिन उनका दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है और ये कि अगले साल आम चुनाव में पार्टी उनके नेतृत्व में एक बार फिर चुनाव जीतेगी। प्रदीप सिंह का कहना है कि सियासत में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का कोई खास मतलब निकाला नहीं जाना चाहिए। उनके अनुसार भागीदार पार्टियों को केवल ये आश्वासन चाहिए कि चुनाव के पहले बीजेपी उन्हें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने देगी और चुनाव में जीत के बाद सरकार में उनके कितने मंत्री होंगे। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
कर्नाटक में 15 दिन पुराने एचडी कुमार स्वामी मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए आज 25 मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें 14 मंत्री कांग्रेस के, 9 मंत्री सहयोगी दल जनता दल एस से और एक एक मंत्री बहुजन समाज पार्टी और केपीजेपी से है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार शपथ लेने वाले मंत्रियों में शामिल हैं। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
यह आवाज है एन महेश की, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की है। उनकी शपथ ग्रहण की अहमियत यह है कि वो बहुजन समाज पार्टी या बीएसपी के दक्षिण भारत के पहले मंत्री हैं। गठबंधन सरकार में इनका कोटा जनता दल सेक्युलर या जेडीएस के हिस्से में आता है क्योंकि उनका बीएसपी के साथ चुनाव से पहले ही समझौता था। महेश मैसूर के कोलेगा क्षेत्र से चुने गए हैं और उन्होंने बुद्धा और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर शपथ ली। महेश के अलावा कांग्रेस के 14 सदस्य और जेडीएस के 9 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन हर कोई खुश नहीं है। कांग्रेस विधायक बीसी पाटिल ने कहा, जो खुश नहीं थे और उन्होंने धमकी दी है वो मंत्री बन गए हैं। धमकी देना ठीक नहीं है, लेकिन हमें लगा कि हम जैसे सदस्यों को मंत्रिमंडल में लेना चाहिए था। ये थे बीसी पाटिल के शब्द। बीसी पाटिल जैसे कांग्रेस के कई सदस्य असंतुष्ट थे कि उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। हालांकि वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं और उन्होंने पहले मंत्री का काम अच्छी तरह संभाले हैं, जैसे कि एच के पाटिल हैं, जो कर्नाटका के पंचायत राज और ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्री रहे हैं और केंद्र सरकार से लगातार इनाम जीत कर आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी ने कहा, हाँ, मंत्रिमंडल बनाने के बाद किसी का असंतुष्ट होना कोई नई बात तो नहीं है। हम इस तरह का माहौल पहले भी देख चुके हैं। हम भी उन सदस्यों से बात करेंगे जो खफा हैं। लेकिन इस तरह का माहौल तो तभी भी था जब 2008 में राज्य में बीजेपी सरकार बनी थी, जब उनके भी बहुत सारे सदस्य बहुत ही नाराज थे। ये थे एच डी कुमार स्वामी के शब्द। बहरहाल दोनों पक्ष मंत्रिमंडल में अपना पूरा कोटा नहीं भरा है। नियमों के अनुसार कर्नाटका में मंत्रिमंडल की संख्या 34 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने 7 स्थान अभी भी खाली रखी है एक और विस्तार करने के लिए, और जेडीएस भी 2 स्थान खाली रखी है। मतलब ये कि दोनों पक्ष असंतुष्ट सदस्यों को संभालने के लिए मंत्रिमंडल का पद देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को सत्ता में रहना जरूरी है। आखिरकार लोकसभा चुनाव अगले साल है और दोनों की टक्कर लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। दुनिया जहान में आज बात इटली की, जहां चुनाव के 3 महीने बाद 2 बेमेल विचार वाले दलों की गठबंधन सरकार बनी है। इस सरकार ने यूरोपीय संघ और शेष दुनिया के भी कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि नए धुर दक्षिणपंथी गृह मंत्री ने तीखा अप्रवासी विरोधी रुख अपनाया है। इस नई सरकार के बाद इटली और यूरोप किन नई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और गुजर सकते हैं, दुनिया जहान में इसी की पड़ताल कर रहे हैं कुलदीप मिश्र।
दुनिया जहां।
Ed ora come faccio così?
लियोनार्डो दा विंची की कलाकृतियां, फेडरिको फेलिनी का सिनेमा, वेनिस और रोम का वास्तुशिल्प, पुचीनी और वर्दी का ओपेरा और समृद्ध लोक संगीत।
Si sente meglio.
Si.
Qui c'è tanto freddo, senga vicino al fuoco.
ये इटली के सांस्कृतिक खजाने के वो नगीने हैं जिनके लिए वह दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन इटली कुख्यात भी है अपने अस्थिर राजनीतिक इतिहास के लिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इटली में अब तक 66 सरकारें बदल चुकी हैं। मार्च 2018 में हुए चुनावों के बाद लगभग 3 महीने की अस्थिरता से गुजरकर इटली को आखिर एक नया प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन कानून के प्रोफेसर जुसेप कोंते के लिए यह चुनौती इसलिए भी मुश्किल हो गई है क्योंकि वो मजबूरी में साथ आए 2 बेमेल विचार वाले दलों की गठबंधन सरकार के मुखिया हैं। ये गठबंधन है व्यवस्था विरोधी 5 स्टार मूवमेंट पार्टी और धुर दक्षिणपंथी पार्टी लेगा यानी नॉर्थ लीग के बीच। सरकार में साझेदारी के तहत गृहमंत्री का पद लीग पार्टी के नेता मात्तेओ सल्विनी को मिला है और पद संभालते ही उन्होंने अपने आक्रामक अप्रवासी विरोधी इरादे साफ कर दिए हैं। इटली की भौगोलिक स्थिति ये है कि उसका दक्षिणी सिरा अफ्रीकी महाद्वीप से महज 230 किलोमीटर दूर है। खासी संख्या में अफ्रीका से शरणार्थी नावों पर सवार होकर इटली के दक्षिणी द्वार सिसिली पहुंचते हैं। इसीलिए पद संभालने के बाद मात्तेओ सल्विनी अपना संदेश साफ करने सबसे पहले सिसिली पहुंचे और वहां उनका खुली बाहों से स्वागत भी हुआ और थोड़ा विरोध भी हुआ। मात्तेओ की लीग पार्टी मानती है कि इन शरणार्थियों के आने से इटली में रोजगार की स्थिति बदतर हुई है। सिसिली में उन्होंने कहा,
Al modo migliore per salvare la vita è evitare che queste persone salvano su quei barconi.
जिंदगियां बचाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ये है कि लोगों को नावों पर सवार होने से रोका जाए। मैं यूरोपीय सहयोगियों और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ इस पर काम करूंगा ताकि उन हजारों लोगों का ये भ्रम टूटे कि इटली में सबके लिए घर और नौकरी है। यहाँ इतालवी लोगों के लिए भी घर और नौकरियां नहीं है।
मातेओ का मत ये भी है कि सिर्फ नए शरणार्थियों को रोकने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो पहले आ चुके हैं उन्हें जितना जल्दी हो सके वापस भी भेजना होगा। ये बात अगर बयान से आगे बढ़ती है तो इटली के ये अब तक के रुझान में एक बड़ा बदलाव होगा। फ्रांस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वेजू नराव ने इसके लिए कुछ हद तक बाकी यूरोप को भी जिम्मेदार मानती हैं।
आज तक इटली ऐसा देश था जिसने कभी इमिग्रेंट्स को नाकार नहीं किया था, और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इटली का जो मूड है वो काफी इमिग्रेशन के खिलाफ हो गया है, और उसकी वजह यूरोपियन यूनियन ही है। क्योंकि इटली की जब आप कोस्ट लाइन देखते हो, उनका तो बहुत लंबा चौड़ा समुद्र की कोस्ट लाइन है जहाँ से माइग्रेंट्स आते हैं। अफ्रीका से पहला उनका जो टापू है लंपेडूसा करके, वहाँ पे उनका पहला लैंडिंग साइट है, और यूरोप ने कभी भी इटली का हाथ नहीं बताया इस इमिग्रेशन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए।
इटली का राजनीतिक इतिहास भी विविधतापूर्ण रहा है। 19वीं सदी के मध्य में इटली में राष्ट्रवादी भावना उभरी। कई सालों के विदेशी प्रभाव से मुक्त होकर 1871 तक इटली लगभग एकीकृत हो चुका था और एक बड़ी शक्ति बन गया था। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत तक इटली में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, लेकिन सिर्फ उत्तरी हिस्सों में, दक्षिण में नहीं। आज भी इटली की ज्यादातर संपदा उत्तर में ही है और दक्षिणी हिस्सा आर्थिक तौर पर उतना मजबूत नहीं है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर जॉनथन हॉपकिन मानते हैं कि मातेओ सल्विनी की ये जल्दबाजी और आक्रामकता अपनी पार्टी के समर्थकों को आश्वस्त करने के लिए है जो मूलतः उत्तरी इटली में ही बसते हैं। वो ये भी कहते हैं कि शरणार्थियों को वापस भेजना कानूनी तौर पर एक टेढ़ी खीर होगा। चुनाव से पहले देश के दक्षिणी हिस्से की गरीबी और देश में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाने वाली पार्टी फाइव स्टार मूवमेंट चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन लोकप्रियतावादी कही जाने वाली इस पार्टी को सरकार बनाने के लिए धुर दक्षिणपंथी और उत्तरी इटली में लोकप्रिय लीग पार्टी से समझौता करना पड़ा है। वेजू नराव ने बताती हैं कि लीग पार्टी ने अपने उदय के समय दक्षिणी इटली विरोधी रुख अपनाया था। इसके नेताओं ने दक्षिणी इटली के लोगों को आलसी और माफिया गतिविधियों में संलिप्त बता दिया था और एक ऐसी व्यवस्था की वकालत की थी जिसमें उत्तर के लोगों के टैक्स का इस्तेमाल सिर्फ उत्तर के लिए हो और दक्षिण के टैक्स का इस्तेमाल दक्षिण के लिए हो। वहीं फाइव स्टार मूवमेंट के विचार इससे बिल्कुल अलग हैं। वेजू नराव ने
फाइव स्टार मूवमेंट जो है वो बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट टाइप लिबर्टेरियन आइडियाज का कोश है, क्योंकि इटली में बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेसी और बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आता है, और इनका ये कहना है कि हम बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, हमें इंस्टीट्यूशनल कुछ भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक मूवमेंट है, हम पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। तो ये काफी अलग अलग विचारों के लोग हैं जो इकट्ठे आ गए हैं, और उनका एक्चुअली एंटी गवर्नमेंट और एंटी इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म जो है वो कॉमन है।
इटली यूरोजोन की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वह भयंकर कर्ज संकट से भी जूझ रहा है। 6 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश की औसत उम्र करीब 46 साल है। यह भी एक वजह है कि अब यह उतनी तेजी से औद्योगिक प्रगति नहीं कर सकता। उस पर बढ़ती बेरोजगारी और शरणार्थियों के आने से कुछ तबकों में नाराजगी पैदा हुई है। यूरोपीय संघ के लिए यह कितनी चिंता की बात है।
यूरोपियन पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं बहुत खिंचाई चढ़ाई हो रही है, क्योंकि 2-3 ऐसे स्टेट्स हैं जैसे पोलैंड देखिए, हंगरी देखिए, जिन्होंने बहुत ही सख्त और कड़ी लेजिस्लेशन अडॉप्ट करी है माइग्रेशन के खिलाफ, जो इस वक्त इटली कर रहा है। इटली तो बहुत ही महत्वदार देश है, वो फाउंडिंग मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। वो इस तरह के जब कदम उठाने लग जाता है जो बिल्कुल यूरोपियन यूनियन के जो कोर वैल्यूज है उसके खिलाफ है, तो बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं।
इटली की ये दोनों ही पार्टियां कुछ वक्त पहले तक यूरोजोन की मुखालफत करती थीं, लेकिन अपने चुनाव अभियान में उन्होंने अपने स्वरों को मध्यम कर लिया। इटली का यूरोजोन से बाहर आना फिलहाल दूर की कौड़ी ही है, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां भविष्य में बनी तो क्या होगा। जेएनयू में यूरोपियन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर एसएन प्रसाद,
जो सरकार पर जो कर्ज है 132% है इनका सकल घरेलू उत्पाद का। यूरोपियन यूनियन में, यूरो जोन में इनका बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रह चुका है, खासकर इन दो पार्टी का। जो संकट है, आर्थिक संकट, यह अगर अलग हो जाते हैं यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से, तो इस संकट से उबरने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उनको कर्ज से उबारने के लिए इनके पास यूरोपियन यूनियन के कोई भी सदस्य नहीं रहेंगे और इसलिए इनकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी।
वहीं वैजू नराव ने ये भी कहती हैं कि हो सकता है कि इटली में बहुत जल्द दोबारा चुनाव हो।
देखते हैं एक साल में क्या होता है। फिर भी हम सोच रहे हैं कि अभी 3-4-5-6 महीनों के बाद इटली में दोबारा से इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका कहना है कि ये इतनी डिस्पैरिट कोलिशन है कि उनकी आपस में सहमत होने का थोड़े कम चांस दिख रहे हैं।
जानकार मानते हैं कि यूरोपीय देशों में अपने राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है और इसने यूरोपीय देशों में एक राजनीतिक भेद पैदा कर दिया है। इटली अब किस दिशा में बढ़ेगा और यूरोप इससे कैसे प्रभावित होगा, इसे लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं।
और अपने तरफ दौड़ाते हैं आज की खेल गतिविधियों पर। सूर्यांशी पांडे मेरे सामने बैठी हुई हैं, बताइए फ्रेंच ओपन से क्या खबर है?
रेहान जी, ये खबर ऐसी है जैसे वो शॉक भी दे सकती है और सरप्राइज़ भी दे सकती है, क्योंकि मारिया शारापोवा को हरा दिया है गार्बिन मुगुरुज़ा ने, और ये विमेन सिंगल्स का मुकाबला हुआ था और 6-2, 6-1 से हरा दिया है। और मुझे लगता है रेहान जी कि इस बार का फ्रेंच ओपन सरप्राइजेज और शॉक से भरा रहा, क्योंकि पहले मारिया शारापोवा का राउंड 4 में सेरेना विलियम्स के साथ मुकाबला था, तो सेरेना विलियम्स का पेक्टोरल मसल का इंजरी हो गई और अब मारिया शारापोवा आउट हो गई।
और वो जिस तरह से हारी हैं, बहुत ही 6-2, 6-1, ये तो बहुत ही वन साइडेड और उनके एक तरह से कमबैक पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है।
बिल्कुल, और अब ये असर भगवान न करे कि राफेल नडाल के फैंस को देखने को मिले, क्योंकि अभी मुकाबला चल रहा है मेन सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल का राफेल नडाल और डिएगो शॉर्ट्समैन के बीच, और देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है। अभी तक एक जो स्कोर आया है वो 1-1 ही अभी दिखा रहा है। और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला मेन सिंगल्स में है मारिन चिलिक और दुआन डेल पोत्रो के बीच, और विमेन सिंगल्स में अगर वापस आए तो आज एक मुकाबला तो खत्म हो चुका है, तो दूसरा मुकाबला चल रहा है सिमोना हेलेप और एंजेलिक कर्बर के बीच। और अगर हम क्रिकेट की तरफ जाएं तो आज ये खबर आई है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से कि रिकी पोंटिंग जो है वो अब जस्टिन लेंगर के साथ कोचिंग स्टाफ में शामिल हो चुके हैं और वो इंग्लैंड के टूर के लिए जाएंगे, और इंग्लैंड का जो टूर है वो 3 जून से शुरू है, और नहीं 7 जून से शुरू है, और 13 जून को पहला ODI मुकाबला होगा इंग्लैंड के खिलाफ, और ये 5 ODI मुकाबलों की सीरीज़ है जिसके अंदर एक T20 मुकाबला है, और शायद इसीलिए अब से ही रिकी पोंटिंग जो है अपनी सेवा शुरू कर देंगे इसके लिए।
कुछ और खबर? हाँ, कुश्ती
एक खबर, हाँ एक खबर ये भी है रेहान जी कि जो 3 फोगाट सिस्टर्स हैं, गीता फोगाट, रितु और संगीता फोगाट, इनको पहले जो है WFI ने, जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था कैंप में, साय ने ही उनको ये बात कही थी कि इनको इनके इनडिसिप्लिनरी एक्शन जो है उन पर लिया गया था, क्योंकि उनका जो रवैया था खेल के प्रति वो उतना परिपक्व नहीं था। लेकिन अब जो है WFI ने उनसे खत मांगा है और उनसे बोला है कि आप हमें लिखित में दें, और वो लिखित अर्जी जो है उनकी कबूल कर ली गई है और अब उनको कैंप में भेजा गया है एशियन गेम्स के।
तो एक मौका उन्हें फिर से मिला है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यांशी। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी ने 25 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर अपने कैबिनेट का विस्तार कर लिया है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि वो अधिक सामान लेकर सफर करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाएगी। कतर एयरवेज के मालिक अकबर अल बकर ने अपने उस बयान के लिए माफी मांगी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पद को कोई महिला संभाल नहीं सकती। माइक्रोसॉफ्ट ने उत्तर पूर्वी स्कॉटलैंड में समंदर में मौजूद अपने डेटा सेंटर को पानी के भीतर रख दिया है। कंपनी का कहना है कि वो इस बात की जांच करना चाहती है कि पानी के भीतर रखने से डेटा सेंटर में किए जाने वाले खर्च में कटौती करना संभव होगा या नहीं। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।